क्या उपदेश प्रदान करना। अरे हम तो गोपी तुझसे प्रीति करने वाली है, तो हमको अरे महापुरुष, अरे भले आदमी जरा विचार तो किया कर, किसको उपदेश दिया जा रहा है, हमको ही उपदेश दे रहा है। हम तो साक्षात रूप से ये चाहती हैं कि तेरे शरण हमारे रक्षक स्थल के ऊपर स्फुरित हो, और उसके से नलनाव पदारविंदम योगेश्वरी हृदय चिंत मगाध बोध ही। जैसे कुरुक्षेत्र मिलन के प्रसंग में कहेंगी, वो श्याम सुंदर तुम्हारे जो सर्वचिन्ह है वो मनसी मुझे आप प्रदान है। हम तो ये चाहती हैं कि हमारे हृदय में सदा सदा स्फुरित हो। श्री स्वामी जी श्याम सुंदर से कहती है, बोले श्याम सुंदर जैसे तू ये कहे कि मेरे चरणों का ध्यान करो, ध्यान करने से बेरा दूर हो जाएगा, ये ज्ञानोपदेश उचित नहीं है। अरे ये ज्ञानोपदेश देना है तो किसी योगेश्वर को देना, गोपी कोई योगेश्वर नहीं है। अरे अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन मोने बोने एक कौरी मान, कहा तुम्हार पद द्वय कराह यदि उदय तब तुम्हार पूर्ण कृपा मान। बोले प्यारे मन कहने का तात्पर्य किसी के लिए होता होगा, मन माने हृदय, परंतु यदि कोई मुझसे पूछे तो मेरे दृष्टि में मन शब्द का अर्थ क्या है, बोले मेरी दृष्टि में मन शब्द का अर्थ है वृंदावन, मोर मन वृंदावन। ये वृंदावन नहीं है, ये किशोरी जी का मन है। तू ही ये कह रहा है कि गोपियों मेरे चरणों का अपने हृदय में ध्यान करो, तो ये ध्यान योगेश्वरों को बताना। अरे महापुरुष, अरे भले आदमी जरा सोचा तो कर, कौन को उपदेश दिया जा रहा है, जो उपदेश का पात्र हो उसको उपदेश देना चाहिए, हम गोपियों को उपदेश दे रहा है। हमारा तो वृंदावन ही हृदय है, और इस वृंदावन रूपी हृदय में हम तेरे चरणों को अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करना चाहती हैं, इसलिए हमसे ऐसे वचन मत कह मत। यहां पर भी वो बता रहे श्याम सुंदर ने जब मनो निरोध करने के लिए उपदेश दिया कि गोपियों अपने मन को वश में करो, प्रार्थना में कह रही हैं कि मन को वश में करोगी तो तुमको ये पता लग जाएगा कि तुम जिसको स्वप्न समझ रही हो वो स्वप्न नहीं है, वो मेरा साक्षात मिलन है। श्री गोपी उत्तर देती हुई कह रही है कि मन निरोध की बात कह रहा है, ऐसा चक्कर ही क्यों डालता है, साक्षात आना, सामने उपस्थित हो, और सामने उपस्थित होकर के हमारे साथ में व्यवहार कर, हमको ये प्रतीति नहीं होनी चाहिए कि हम वियोग में हैं, पहले आकर के हमको समझा कि गोपियों मैं तुम्हारे पास में हूं साक्षात रूप से, तो फिर ये भ्रम नहीं होगा। अभी तो मनो निरोध करने के लिए बार बार उपदेश दे रहा है, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए जरा विचार किया कर किसको उपदेश दिया जाए, जो योगेश्वर हो उनको ये ज्ञान का उपदेश देना। यहां पर गोपी योग योग हम नाही, गोपी कह रही है उधो योग योग हम नाही, हम योग के योग्य नहीं है, हम तो रसमयी हैं, और रसमयी होने के कारण हमारे सामने रस की बात ही तू निरंतर निरंतर का। श्याम सुंदर तो एकदम चौंक गए, और पांच श्लोकों में जो योग शास्त्र का उपदेश दिया उस योग शास्त्र के उपदेश को छोड़ करके, चित्रवृत्ति के निरोध के उपदेश को छोड़ करके छठे श्लोक में कहने लगे कि यत्व हम भवती नाम बई दूरे बरते प्रियोद्रुषाम मनसस्तन्य कर्षार्थम मग्नोध्यान काम्या। तो गोपियों मैं तुमसे दूर इसलिए हूं कि दूर रहने पर प्रीति बहुत अधिक बढ़ती है। गोपियों केवल आंखों से कुछ देर के लिए मैं ओझल हो गया हूं, हृदय से ओझल नहीं हूं, हृदय में तो निरंतर निरंतर तुम्हारे सामने विराजमान हूं। तो मनसस्सन्निकर्षार्थम मन को अपने साथ में और अधिक जो मिलाने के लिए, सन्निकृष्ट करने के लिए ही, मिलाने के लिए ही मैंने कुछ देर के लिए तुमको वियोग प्रदान किया है, मेरा ध्यान करते हुए तुम मुझ में जल्दी तन्मयता को प्राप्त करोगी। क्योंकि यथा दूर करे प्रेष्ठ मन आविश्य वर्तते श्रीअंग तथा चेतः सन्निकृष्टेक्ष गोचरे। सच बात तो यह है कि संयोग और वियोग, इनमें वियोग ही श्रेष्ठ है। श्री स्वामी आपने स्वयं ने मुझे उपदेश दिया था कि संगम विरह विकल्प वर में विरह न संगमत सत्य एक मिलने सकलम भुवनम तन्मयम जगह। तब श्री श्यामसुंदर प्रिया जी से पूछ रहे हैं, बोले प्रिय संयोग बड़ी वस्तु है कि वियोग बड़ी वस्तु है। श्री प्रिया जी अपना अनुभव कह रही हैं, बोले प्यारे मुझसे यदि पूछे तो मैं ये कहूंगा कि संगम विरह विकल्प, संयोग वियोग इन दोनों के विकल्प में वर में विरह, विरह ही श्रेष्ठ है, न संगम सत्य, संगम श्रेष्ठ नहीं है। जो संगम में प्यारा एक है, एक ही दिखता है, परंतु वियोग में कण कण में प्यारा विद्यमान दिखता है, वियोग में सर्वत्र प्यारा ही प्यारा दिखता है। तो एक सैव मिलने सकलम भुवनम तन्मयम विरह, विरह में सारा संसार ही तन्मय दिखता है, इसलिए विरह ही श्रेष्ठ है। विरह में विरह नहीं है, वह विशिष्ट राह है, अत्यंत अत्यंत एकांत अत्यंत मिलन को प्राप्त कराने वाला होकर के ही वह विराजमान है। इसीलिए उसका नाम है वियोग, विशिष्ट रूप से जो योग कराए, विशेष प्रकार से जो संयोग कराए, उसका नाम वियोग है। इसलिए गोपियों, मैंने आपके इस आदेश को धारण करके ही कुछ देर के लिए केवल नयनों से परोक्ष हुआ हूं, आंखों से अलग हटा हूं। गोपियों, मैं तो आपके पास में ही विराजमान हूं, क्योंकि जैसा चित्त मिलन में नहीं लगता, वैसा वियोग में चित्त प्यारे में अतिशय आसक्त होता है। मय्यावेश मन कृष्णम विमुक्ता शेष वृत्तिय अनुस्मरण तो नाम माम नित्यम अचरान माम उपैश्यथ। मय्यावेश मन कृष्णम, गोपियों मुझ में अपने चित्त को लगा दो, और विमुक्ता शेष वृत्तिय, अन्य जितनी भी वृत्तियां हैं उन सबों को त्याग करके आप यदि मुझ में चित्त लगाओगी तो अनुस्मरण तो माम नित्यम, मेरा स्मरण करते हुए अचरान माम पैश्यत हो। हे गोपियों, मैं जल्दी ही तुमको प्राप्त हो जाऊंगा, ये तो कहा ऊपर से, तो भीतर से प्रार्थना क्या है? बोले गोपियों, आप तो मुझसे इतनी दूर रूठ करके बैठी हो, मुझे दूर आपने भगा दिया है। मय्यावेश मन कृष्णम विमुक्ताशेष वृत्तिर, मुझ में अपने चित्त को तनिक लगाओ तो सही, अन्यत्र अन्यत्र से चित्त को हटा करके मुझ में चित्त लगाओ तो सही। अनुस्मरण को आप जब भी मेरा स्मरण करोगे करोगी, अचरान माम उपैश्यत हो, मेरा स्मरण करें गोपियों, कब आप जल्दी से मुझे अपने पास बुलाओगे, ये प्रार्थना मुद्रा है। अचरान माम उपैश्यत हो, जल्दी से मुझे अपने पास में रखो, जल्दी से मुझे प्राप्त हो, मैं आपके योग में व्याकुल हो रहा हूं, ये प्रार्थना मुद्रा में श्री श्याम सुंदर गोपियों से कहने लगे कि अनुस्मरण क्यों गोपियों, आप अनुस्मरण तो मेरा निरंतर कर ही रही हैं, अचरान माम उपैश्यत हो, अब कब तक मुझे दूर रखोगी, जल्दी से मुझे अपने पास में बुला लो बुला लो, मैं भी आपसे मिलने के लिए अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं, अब संतोष हुआ। बोले हाँ, ये बात ठीक कही, पहले जो न जाने क्या क्या बक रहे थे, मन को यो निरोध करो यो, और फिर मैं ऐसा आया हूं, मैं ये ऐसा हूं, उससे संतोष नहीं हुआ। जब गोपियों ने ये श्याम सुंदर ने ये कहा अचरान माम उपैश्यत हो, जल्दी से मुझे अपने पास में रखो, मुझे प्राप्त हो, अपना दर्शन मुझे दो, ये जो प्रार्थना में श्याम सुंदर ने वचन कहे, तब गोपियों को संतोष प्राप्त हुआ। गोपियों, आप जैसे ही मेरा ध्यान करोगी, आपकी यदि कृपा हुई और आपने यदि मेरा स्मरण किया तो मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा, इसमें यदि आपको विश्वास नहीं हो तो मैं आपको पुरानी एक घटना याद दिला दू। बोले कौन सी? बोले या मया क्रीडता रात्र्याम बनेस्मिन ब्रज आश्रिता अलब्ध राशा कल्याण्य हो मापुर मद्वीर्य चिंतन। बोले जैसे या मया क्रीडता रात्र्याम, जिस समय रात में मैंने वंशी बजाई और वंशी बजाने में सब गोपकारण मेरे पास में श्री यमुनापुलिन पर उपस्थित हो गई, परंतु जिन गोपियों को उनके पतिमन्य गोपों ने रोक लिया और मेरे पास में नहीं आने दिया, वे गोपकारण विरह में इतनी व्याकुल हो गई कि दुस्साह प्रेष्ट विरह तीव्र ताप धुताशुभा ध्यान प्राप्त स्थिताश्लेष निर्वृत्तिया क्षीण मंगला। दुस्साह प्यारे का जो विरह ताप उस विरह ताप के द्वारा तीव्रताप भूता शोभा, उनके जितने भी अशुभ थे वे सब अशुभ समाप्त हो गए, अशुभों की तो निवृत्ति हो गई, पर दुष्टाप्रेष्ट विरह तीव्र ताप अधुता शोभा। अतः प्रश्न करके भी अर्थ है, जिस समय श्याम सुंदर के पास में मिलन प्राप्त कर रही है, विरह दूर होने पर कृष्ण सेवोपयोगी सुंदर स्वरूप प्राप्त होकर के ध्यान में ही श्याम सुंदर के साथ में ये मिलन प्राप्त कर रही है, उस समय अधुता शोभा, इनके मंगल में जितने भी चिन्ह थे वे चिन्ह समाप्त नहीं हुए। मंगल में सिंदूर बिंदु, कंठ में जो मंगल सूत्र धारण कर रखे हैं, उन मंगल सूत्र आदि को धारण किए हुए ये सब की सब गोपी श्याम सुंदर को प्राप्त हुए। ध्यान प्राप्त अच्युत आश्लेष, ध्यान में ही श्री श्याम सुंदर के उस अच्युत आश्लेष को प्राप्त किया, जहां पर मिलन कभी बाधा को प्राप्त हो ही नहीं। अनाद काल से ये जोड़ी मिल रही है, अनाद काल तक मिलती रहेगी, जहां पर सहज नित्य विहार निरंतर निरंतर विराजमान, अच्युत जो विहार वो अच्युत विहार सर्वदा सर्वदा विराजमान है। तो अलग धराशा, जिन गोपियों को रास की प्राप्ति नहीं हुई थी वे कल्याणियों मापन मध्य ने चिंताया, वे मेरा ध्यान करते हुए जैसे मुझे प्राप्त हो गई, ऐसे आप भी आप मेरा ध्यान करो, आप जल्दी ही मुझे प्राप्त हो जाओ। श्री गोप कादरों को बड़ा धैर्य प्राप्त हुआ, श्याम सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कल्याणियों मापन मध्य चिंताया, जरा मेरा भी तो चिंतन करो, तनिक सा मेरा चिंतन करोगी आप जल्दी ही मुझे प्राप्त होगी, मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं उत्सुक हूं। ऐसे प्रार्थना भंगिमा जिनमें से प्रकट हो रही थी, उन वचनों को जहां सुना गोपकारों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, इस प्रियतमा आदिष्टम आकर्ण ब्रजोषिता ता ऊसु उद्धवम पीता तत् संदेशागत स्मृति ही। श्याम सुंदर के इन संदेश को श्रवण करके इन गोपकारों को स्मृति की प्राप्ति हो गई है, और ये ब्रज गोपकारण उस समय श्री उद्धव से आनंदित होकर के बोली। श्री गोपी श्याम सुंदर से कह रही हैं, बोले उद्धव बड़े मंगल की बात है कि कंस मारा गया जो यादवों के साथ में बैर रखे हुए था, बड़े मंगल की बात है कि दृष्टाप्त ही लब्ध सर्वार्थ ही कुशल यास्ते चतुर्धुना, जिन यादवों को अपूर्व कष्ट की प्राप्ति थी उन्होंने अब सर्वार्थ प्राप्त कर लिया, श्री हरि भी मथुरा में इस समय कुशल पूर्वक विराजमान है, कश्चित गदाग्रज सौम्य करोत पुरुषताम प्रीति न स्निग्ध सब्रीड हास दारोक्षणार्चित। श्री श्याम सुंदर मथुरा में कुशल पूर्वक तो विराजमान है, वहां पर तो पुरुषतागण उनकी सेवा करती होंगी, अब तो रानीगण उनकी सेवा करती होंगी, जैसे श्री कृष्ण का भी विवाह नहीं हुआ है, परंतु मथुरा योग पीठ में भी रुक्मिणी सत्यभामा आदि का ध्यान है। मथुरा और द्वारका ये दोनों योग पीठ अलग अलग हैं, जहां मथुरा योग पीठ का ध्यान है वहां पर मथुरा में श्री कृष्ण का रुक्मिणी सत्यभामा आदि से युक्त होकर के ये ध्यान। अतः गोपकारों का ये जो ध्यान, ये जो वर्णन, वो मंत्रमयी उपासना को ध्यान में रख करके ही ये ध्यान है कि अब तो मथुरा वासी पुरुषताओं से युक्त होकर के ही वे विराजमान होंगे, कदाचित गदाग्रज सौम्य करो तो पुरुषता, मथुरा वासी जितनी भी स्त्री गण हैं उनके साथ में वे प्रीति करते हुए विराजमान तो होंगे। यहां ईर्ष्या प्रकट हो रही है, श्री प्रयागर जी हैं जो श्याम सुंदर के ऊपर आक्षेप में जो वचन है वो आक्षेप में वचन प्रकट कर रहे हैं। एक बड़ी आश्चर्य की बात है, और ये बात गोपियों की महिमा को सुसिद्ध कर देती है कि मथुरावासिनी पुरवासिनी जितनी भी स्त्रियागण हैं उन सबों की गोपियों के प्रति आदर भावना ही विराजमान है, कभी ईर्षा भावना नहीं। परंतु श्री ब्रज गोपी धारण मालिनी मुद्रा धारण करके श्याम सुंदर के ऊपर पुर्योषितम पुर्योषितम कहकर के आक्षेप वचन प्रकट कर, तो ब्रज के ब्रजवासिनियों में तो श्री ब्रज गोपी धारणों में तो मान मुद्रा है, परंतु गोपियों को लेकर के पुरवासिनी प्रियागणों में कहीं भी मान मुद्रा प्रकट नहीं होती है। जब कभी मान मुद्रा प्रकट होती है तो श्याम सुंदर उनको फटकार देते। श्री बृहद भागवत अमृत में वो चरित्र सब लोग जानते हैं, कभी श्री श्याम सुंदर ब्रज के वियोग में अत्यंत अत्यंत व्याकुल हैं। श्री सत्यभामा जी मन में विचार करें कि यदि मैं मान धारण कर लूंगी मेरे क्रोध को देख करके श्याम सुंदर का हो सकता है ये बिरह ब्रज का बिरह, श्याम सुंदर को थोड़ा सा संकोच हो और संकोच में भयभीत होकर के श्याम सुंदर ब्रज के बिरह का त्याग कर दें, उनमें भावांतर हो जाए। तो श्री सत्यभामा जी ब्रज भागवत अमृत में वर्णन है थोड़ा सा मान धारण कर लें। श्री कृष्ण ब्रज गोपीधारणों की महिमा का गायन कर रहे हैं, बोले आहा गोपियों में जो प्रीति विराजमान, उस प्रीति का कौन वर्णन कर सके। वहां सब 16,107 महारानी में विराजमान है केवल सत्यभामा जी को छोड़कर के। श्री कृष्ण ने पूछ लिया, अरे तुम लोगों के बीच में सत्यभामा नहीं दिख रही है। कहीं पता लगा कि ब्रज श्री राधिका की महिमा का श्रवण करके सत्यभामा जी मानकोप मंदिर में पधारी है, मान मंदिर में पधारी है। श्री श्याम सुंदर को तो क्रोध आ जाए, बजाय इसके कि मान करने वाली प्रिया को मनाने के लिए जाएं, उल्टे आप क्रोधित हो जाएं और कहें वो सत्यजित कन्या कहां है, उसको यहां बुलाकर चलाओ। जैसे स्वर्ग के कल्पवृक्ष के फूलों के लिए वो कभी मान धारण करके बैठी, आज वो श्री राधिका के संग में अपनी बराबरी करना चाहती है, उसे मेरे सामने उपस्थित करो। बस इतनी देर में सत्यभामा जी का तो पारा नीचे, सत्यभामा जी को घबरा जा, बोले हर युद्ध को अपराध हो गया, हर सब कांपती हुई रानियों के पीछे छिप करके खड़ी हो जाए, क्षमा प्रार्थना करें। बोले मैंने तो केवल दिखावा मात्र किया था, श्री राधिका के साथ में कोई बराबरी कर रही हूँ वो बात नहीं है, मैं जानती हूँ ब्रज गोपीधारणों के साथ में कोई बराबरी नहीं कर सकता है। मैंने तो केवल मान मुद्रा धारण करके ये विचार किया था कि शायद आपकी सेवा बन जाए इस मान के द्वारा, और आप में जो विरह उत्पन्न हुआ है या विरह ताप दूर हो जाए। उस समय श्री कृष्ण नारद जी भी विराजमान है, सत्यभामा जी विराजमान है। सत्यभामा नारद दोनों से कहने लगते हैं, बोले आहा यह विरह जिसको दुख कहा जा रहा है यह दुख नहीं है, विरह से बढ़कर के कोई दूसरा सुख नहीं है। सचेतों का सहृदयजनों का चित्त ही इसमें एकमात्र प्रमाण है। विरह में जैसे सुख की प्राप्ति है ये विरह नहीं है, यह विषामृत एकत्र मिलन प्रत्यक्ष रसचर्व महाप्रभु कह रहे हैं। बोल ये तपे हुए ईख के रस का पान है, जैसे ईख के रस का गरम गरम ईख का रस पीने का स्वाद ही अलग है। चाय कॉफी ठंडी हो जाए किस काम की, कोई कॉफी की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु चाय ठंडी हो जाए तो किस काम, कॉफी ठंडी हो जाए तो किस काम की। तो जैसे गरम जीव जले वो भी उसका एक स्वाद है, ऐसे ही प्रत्यक्ष रसचर्वण ये विरह जो है एक और ऊपर से देखने में कष्टात्मक लगता है, दुखात्मक लगता है, परंतु भीतर या परम परम सुखरूप होकर के ही विराजमान है। ये विषामृत एकत्र मिलन ऊपर से विष जैसा परंतु भीतर अपूर्व अमृत जैसा, जिसके आगे कोट कोट विष का अभिमान भी समाप्त हो जाए और जिसकी मधुरमा के आगे निश्चन्न मुदा सुधा मधुरमा गर्वस्थ संकोचन प्रेमा सुंदर नंद नंदन परो जागृति यस्यांतरे जायन्ते स्फुटमत्र वक्र मधुरा तेलई विश्रांत। ये प्रेम वह वस्तु है जहां पर कष्ट की भी पराकाष्ठा और सुख की भी पराकाष्ठा और कष्ट में भी सुख की पराकाष्ठा जहां विराजमान। जिस समय ब्रज गोपीधारणों की महिमा का गायन किया, नारद जी आए हुए थे इस ढूंढते ढूंढते चक्कर लगाते लगाते कि कृष्ण प्रेम का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है। श्री कृष्ण के मुख से जिस समय ब्रज गोपिकागणों की कृष्ण प्रेम पात्र कौन है इसका निर्धारण करने के लिए नारद जी निकले थे। और श्री कृष्ण के मुख से जब श्री राधिका की महिमा का श्रवण कर रहे हैं नारद जी तो कृतकृत हो गए। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण कह रहे हैं बोले नारद बाबा तुम बड़े अच्छे आए, आज मुझे ब्रजवासियों की याद आ गई और तुम्हारे कारण ब्रजवासियों की महिमा का गायन करने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ। तुम्हें जो चाहिए वो वरदान मांगो। नारद जी बोले बोले मारे वरदान दे रहे हो तो दो वरदान मांगता। बोले क्या? बोले एक वरदान तो ये मांग रहा हूं कि जो आपकी और ब्रजवासियों की महिमा को कहें और ब्रजवासी और आपकी महिमा का श्रवण करें उनको कभी भी तृप्ति न हो। जय जय एक वरदान मांगा। बोले कृष्ण कथा कहने और सुनने वालों को कभी भी तृप्ति न हो ये एक वरदान। भगवान बोले ये तो भक्ति का स्वभाव है उसमें कभी तृप्ति नहीं होती, कुछ और वरदान मांगो। बोले दूसरा वरदान मांग रहे हो दे रहे हो तो दूसरा वरदान ये मांग रहा हूं कि अपना हाथ मेरे माथे के ऊपर रख करके सौगंध खा करके आपको ये कहना पड़ेगा कि जो कृष्ण कथा कहेंगे जो कृष्ण कथा और ब्रज गोपिकागणों की महिमा का गायन सुनेंगे कहने और सुनने इन दोनों के वक्ता और श्रोता दोनों के हृदय का त्याग करके आप जाओगे नहीं। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण ने वरदान दिया। अब ये भक्त पर जो जी रहे हैं उनके वरदान के भरोसे, इससे ज्यादा कोई और कृपालुता हो नहीं सकती है कि जो कृष्ण कथा श्रवण करें गोपियों की महिमा का श्रवण करें उनके हृदय से कभी श्री कृष्ण जाते नहीं है। जो दुर्लभ वरदान प्रदान किया कि कृष्ण कथा सुनने वालों को कभी तृप्ति नहीं हो और कृष्ण कथा सुनने वालों के हृदय से भगवान बध करके बैठ जाए उनके हृदय से कभी जाए। श्री गोपिकागण यहां पर यही कह रही हैं बोले बड़े मंगल की बात है श्री श्याम सुंदर सुखपूर्वक मथुरा में विराजमान है, अब तो रानियों के साथ में प्रीति होती होगी हम गोपियों की याद उनको काय को आती होगी। स्वभाव ही ऐसा है कि कहां तो हाय हाय मची हुई है और फिर भी बामता आई जाए तेहापन आई जाए। कहने लगे कि वो रत्न विशेषज्ञ कभी हम गोपिकागणों का कभी स्मरण करता है कि नहीं, अपस्मरण साधो गोविंद प्रस्तुते क्वचित, कभी श्री श्याम सुंदर हमारा भी स्मरण करती है कि नहीं, गोपियों के उन राज महर्षियों के बीच में कभी हम जनों की ब्रजवासी जनों की हम ग्रामीण इन गोपियों की भी कभी वे चर्चा करती है कि नहीं, उनको कभी याद है या नहीं, ताकि निशा स्मरत ताक कभी वे उस रात्रि की स्मृति कर रहे मोमबत्ती दुर्बला मोमबत्ती चलिए कभी वे हम गोपियों की कभी याद करते हैं कि नहीं। श्री प्रियाओं के साथ में जिस समय श्रीमद वृंदावन में वो अपूर्व लीला की थी उस लीलाओं में हमारे साथ में ही वे क्रिया करते हुए जहां पर रास मंडल में रास मंडल बद्ध होकर के क्रिया कर रहे हैं। कृत्वा तावंत मात्मानम यावती गोपी योषिता, गोपी जैसी है उतने ही स्वरूप धारण करके जिस गोपी में जैसा भाव वैसा ही भाव धारण करके जिस गोपी का जैसा श्रृंगार वैसा ही श्रृंगार धारण करके आप जिस समय रास करते हुए विराजमान है पादन्यास ही भुज भुजी सस्मित भ्रूप रास भज्जन मध्य स्थल कुछ पटई कुंडल गंडलोल सुजन मुख्या कवर रचना गंध कृष्ण बद्धो गायन के स्तम तर्ज के होता मेघ चक्रे गिरे गुरु, जैसे बादल के बीच में बिजली की अपूर्व शोभा ऐसे ही यहाँ श्री प्रियागणों की सहज स्वाभाविक शोभा है जिसमें किसी जड़िया का जवाब बीच में कारण नहीं। पादन यासे कभी श्याम सुंदर के साथ में गलवैया दिए हुए नृत्य कर रही हैं, पांच चरणों से नृत्य चल रहा है पादन यासे चरणों से तप तप थैया तथैया किड 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 धाम तोक तथाम था। नृत्य जो है वो चल रहे हैं चरणों के द्वारा, परम जो है वो परम प्रकट की जा रही है, नृत्य माधुरी प्रकट की जा रही है। कभी भुत विदुत भी चरण बंद हो गए हैं, परंतु श्री हस्त के द्वारा ही ताल प्रकट की जा रही है, नृत्य प्रकट किया जा रहा है। तत् तत् भैया श्री हस्त जो है उनका ही विस्तार करते हुए, उनका ही नर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं। पादन न्यास ही भुज विदुत ही, कभी चरण भी बंद है, श्री हस्त भी बंद है, परंतु भ्रु विलास ही भवों के द्वारा यहाँ नृत्य हो रहा है। तत् तत् भैया भवें नाच रही है और भवों के द्वारा ही अपूर्ण रूप से नृत्य हो रहा है। सस्मित कभी अधर की कोर जो है उनके द्वारा नृत्य हो रहा है, उनके द्वारा सारी ताल जो है उनको प्रकट किया जा रहा है। पादन्यासी भुज विदुत भी सस्मित स्मित जो है वो स्मित ही जहां पर नृत्य करते हुए विराजमान है। कभी भ्रू विलास जो है उनके द्वारा नृत्य हो रहा है। शुद्ध मुख्य कवर रचना श्रृंगार की शोभा ही नहीं, शोभा तो है श्रृंगार की जितनी शोभा उससे भी ज्यादा शोभा है श्री मस्तक के ऊपर विराजमान जो प्रश्वेद की बिंदु, उन प्रश्वेद की बिंदुओं की शोभा कुछ कम है क्या? जिन प्रश्वेद बिंदुओं के आगे, जिन प्रश्वेद बिंदुओं के आगे मोतियों की जो शोभा है वो मोतियों की शोभा भी बस भक्त मोतियों की शोभा भी जहां पर सीटी पड़ जाए मुक्ता, जैसे रत्नों की चमक हो रही है उस रत्नों की चमक के समक के साथ साथ सुजन मुख्या जो प्रश्वेद है वो प्रश्वेद की जो शोभा, वो प्रश्वेद की शोभा भी अद्भुत होकर के विराजमान है। तो रेमे कणक चरण नूपुर रासगोष्ठ्याम, जहां रासगोष्ठी में चरण नूपुरों का अपूर्व रूप से विस्तार करते हुए श्री श्याम सुंदर कृत्वा तावंत मात्मानम, गोपी जैसी है वैसे ही श्रृंगार वैसे ही वेश वही कला वही नृत्य वही परम वही ताल उनको प्रकट करते हुए आप नृत्य कर रहे हैं। कोई गोपी लंबी है तो श्याम सुंदर भी लंबे, कृपा तावंत मात्मानम, कोई गोपी गुत्ती है तो श्याम सुंदर भी गुत्ते, कृपा तावंत मात्मानम, जैसी गोपी वैसा ही स्वरूप वैसा ही भाव धारण करके आप नृत्य कर रहे हैं। आहा श्री श्याम सुंदर उस रास की अपूर्व विदग्धता का कभी मथुरा में चर्चा करती है कि नहीं? अपेक्षति बाधारह तप्ता स्वकृतया सुचा संजीव अन्न लो गात्री यथेन्द्र बन मम्मुरई। बोले कभी श्री श्याम सुंदर हमारे दुख को दूर करने के लिए आएंगे ही आएंगे कि नहीं? अरे जो ब्रज में इंद्र कोपा था तब उन्होंने आकर के कैसे हमारी रक्षा की थी, आज श्री कृष्ण हमारे पास में आएंगे कि नहीं? हमारे ऊपर इतनी आपत्ति आ रही है, क्या वे हमको संभालेंगे नहीं? अरे फिर बोली अब तो उनको राज्य मिल गया है, अब ब्रज में काय को आने लगे, तस्मात कृष्ण हायाती प्राप्त राज्यो हताहता, अब तो वहां पर सारे शत्रुओं का भी वध हो गया है, राज्य प्राप्त हो गया है, श्रीपति हो गए हैं, अब यहां पर क्या काम रखा है जो वे आकर के हमको संभालेंगे? परम सौक्षम ही नहीं राश्यम, आज जानवी जानवी कि निराश जो हो जाए उसे ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। परम सौक्षम ही नहीं राश्यम, निराश हो जाना ही परम परम सुख की बात है। उस स्वर्णी पिंगला ने भी कहा था कि सब जगह से आशा छोड़ दे, परंतु आशा रखे कहा? बोले आशा रखे बस श्री कृष्ण के चरणार्जन। यह जो एक मन बहुत थोर कर कहो कौन सुख पाओ, जहां तहां विपत जार युवती लो प्रकट पिंगला गाय। श्री हितहरण जी का पद है बड़ा सुंदर, यह जो एक मन, ये जो मन है इस मन को यदि अनेक जगह लगाया जाएगा तो सुख नहीं मिलेगा। वो वेश्या यदि सब जगह चित्त लगाती रही तो उसको संतोष की प्राप्ति नहीं हुई, और जब उसने दत्तात्रेय भगवान का दर्शन करके अवधूत मुनि का दर्शन करके सब जगह से चित्त हटा दिया और केवल अपने हृदय में विराजमान अपने प्रिय श्री श्याम सुंदर से ही उसने प्रीति लगाना प्रारंभ किया, उस अंतर्यामी से ही उसने प्रीति करना प्रारंभ किया तो उसके सारे दुख जो थे वो दूर हो गए। उसी का स्मरण करती हुई कह रही है कि परम सूक्ष्म ही नैराश्यम सौरिन न्यप्याह पिंगला। उस पिंगला ने पिंगला ऋषा ने भी ये कहा था कि नैराश्य ही परम सुख है, जो आशा है वही परम दुख है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संतज कांत्य आशा सुखम सुस्वाप पिंगला। फिर मिलन की आशा को छोड़ करके वो पिंगला सुखपूर्वक सोई थी, ये बात हम जानती हैं। परंतु प्यारे जब तू ये कहे कि तेरे प्रति आशा छोड़ दें तो हम नहीं छोड़ सकती हैं, तथा प्यासा दुरप्यया इस आशा को ही नहीं छोड़ सकती हैं, कभी न कभी तो सुख कृपा करेगा ही करेगा। कौन ऐसा होगा जो तेरे साथ में हुए उन मधुर आलाप वचनों को त्याग कर दे। अरे जब लक्ष्मी वक्षस्थल के ऊपर विराजमान है, वो लक्ष्मी भी अनिश्चितोपि यशस्वी अंगान्यवते क्वचित, तू लक्ष्मी को नहीं चाहता है परंतु फिर भी लक्ष्मी तेरे वक्षस्थल का कभी भी त्याग नहीं करे। लक्ष्मी तेरे दोष को जानती है कि सुमंगल कश्चन कांक्षते ही माम, कोई अपूर्व सुमंगल है ये मुझे चाहते नहीं है। जिसमें लक्ष्मी उत्पन्न हुई बरमाला लेकर के नारायण के कंठ में बरमाला धारण कराने के लिए गई, लक्ष्मी मन में विचार कर रही है कि अरे वो पंक्ति की पंक्ति बैठी हुई है, सामने बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, बोले इनके गले में बरमाला डाल दू, बोले इनमें आयुष्य नहीं है। आगे चली इंद्रादिकों को देखा, बोले ये भयभीत है, डर जाते हैं, डर को पति किसी काम का नहीं। आगे चली चंद्रमा जैसे ब्रह्मा जैसे तपस्वियों का सामर्थ्य बालों का दर्शन किया, बोले इनके गले में बरमाला डाल दूं, फिर विचार किया नहीं नहीं ये कामी है, कामी पति भी किसी काम का नहीं। आगे चली शिवजी का दर्शन किया, बोले ये तो संपूर्ण गुणों से युक्त है परंतु इनका देश मंगलमय नहीं है। संकादिकों का दर्शन किया, बोले इनके साथ में गृहस्थी का सुख नहीं है। सबसे पीछे नारायण का दर्शन किया, लक्ष्मी को सटक गई कि सुमंगल कश्चन कांक्षते इमाम, बोले परम सुमंगल यदि कोई है तो श्री नारायण ही है, परंतु इनमें भी एक दोष है। बोले क्या? बोले न कांक्षते इमाम, ये मुझे चाहते नहीं। पास में सरस्वती जी खड़ी हुई थी, सरस्वती जी बोली, बोले सखी नकार का संश्लेष करके मत बोलो, नकार का संश्लेष करके बोलो, ना को अलग करके मत बोलो, सुमंगल कश्च न कांक्षते इमाम, ना को तोड़ करके मत बोलो, ना को मिला करके बोल दो कि कश्चन सुमंगल कांक्षते इमाम, ये कोई अपूर्व सुमंगल है जो मुझे चाहते हैं। जहां प्रीति है वहां ये तुमको चाहते हैं, यदि तुम अपने ऐश्वर्य के द्वारा इनको वशीभूत करना चाहो तो ये तुमको नहीं चाहेंगे। सुमंगल कश्चन कांक्षते इमाम, ना को अलग करके जो बोल रही हो कश्चन में से, ना को ये तोड़ करके बोल रही हो, तोड़ करके बोलने की जरूरत नहीं है, बस मिला करके बोल दो कश्चन सुमंगल है, कोई अपूर्व सुमंगल है जो कांक्षते इमाम, मेरी प्रीति के कारण मेरे वशीभूत होकर के विराजमान। तो अनिश्चितों की यशस्वी अंगान्यवते क्वचित, श्री नारायण लक्ष्मी की ओर कभी नहीं चाहे तब भी लक्ष्मी नारायण के वक्षस्थल का त्याग नहीं करती है। कौन नारायण का उन श्री कृष्ण का त्याग कर सकेगा? हर सविथल बनोद्देशा गावो गेणु रवा इमे संकर्षण सहायनो कृष्णेनाचरिता प्रभु। श्री उद्धव जी गोपियों से बोले, बोले गोपियों यदि ऐसी बात है तो एक उपाय बताता हूं, कभी मन नहीं लगे बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाओ तो वन में विचरण कर आया करो, यमुना जी के किनारे घूम फिर आया करो, थोड़ा सा मन बहल जाएगा। गोपी बोली कि सब शैल बनोद्देशा, जिस समय श्री यमुना का दर्शन करती हैं, जिस समय श्री गोवर्धन की कंदराओं का दर्शन करती हैं, जिस समय वृंदावन का दर्शन करती हैं, गैयाओं का दर्शन करती हैं, कहीं कोई गोप बेलोरव बजा रहा हो, उसका कोई बेलनार कान में पड़ जाए, किसी गोप का बेलनार भी सुन जाए, तो उस बेलनार को सुनकर के श्याम सुंदर के बेलनार की याद आ जाती है। यमुना का दर्शन करके श्याम सुंदर के साथ मिलन की याद आ जाती है। श्री बलदाऊ के साथ में विक्रिया करते हुए विचरण करते इस प्रकार पुनः पुनः श्री श्याम सुंदर का ही स्मरण करती हुई ये गोपिकागण अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गई और कह रही है श्री निकेतन कई विस्मर तुम नहीं सकनो महा हाय श्याम सुंदर के चरणों का त्याग करने में हम समर्थ नहीं है समर्थ नहीं। कैसे उनकी मधुर वाणी कैसे उनकी गति ललित उदार हाथ उनके कटाक्ष पूर्वक लीला पूर्वक अवलोकन उनके प्रार्थना में वचन इनका हम कैसे त्याग कर सकती हैं। इन सब ने हमारे हृदय को हरण कर लिया है। ऐसा कहते कहते श्री प्रियागण सारी गोपिकागण आर्त होकर के पुकारने लगी हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ आर्त नाशनो मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनारायणवास। बोले हे गोविंद हम गोपिकागणों की रक्षा करो रक्षा करो। हम सब कृष्ण वियोग में आपके वियोग में अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसे गोपियों ने जो विलाप प्रारंभ किया ततस्ता कृष्ण संदेश ही जपेत विरहज्वर। इस प्रकार गोपियों को विकल होते हुए देखते ही श्री श्याम सुंदर अलक्षित रूप में वहां पर उपस्थित हो गए और अलक्षित रूप में उपस्थित होकर के जो प्रिया जो है उनके नयनों का मार्जन करते हुए नेत्रों में जो अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है उनको मानो पहुंचते हुए प्रियाओं को अपने परम सुख को प्रदान करते हुए श्री प्रियाओं को भाव रूप में उपस्थित होकर के आप धैर्य प्रदान कर रहे हैं। साक्षात पद गोपी अपनी विरह वेदना के कारण अपनी भावना के कारण ये समझ रही है कि हमको तो श्याम सुंदर के केवल धर्म में दर्शन हो रहे हैं ये स्वप्न में दर्शन हो रहे हैं। ये ब्रज का वो पुरानी कहावत है ना कि बहन की दवा लुकमान हकीम के पास में भी नहीं तो बहन की दवा किसी के पास में गोपियों को यह बहन ही है। साक्षात जो मिलन है उस साक्षात मिलन को भी यही समझती है कि ये स्वप्न है। श्याम सुंदर तो साक्षात उपस्थित होकर के इन गोपिकागणों को धैर्य दे रहे हैं परंतु ये उसे भ्रम समझ रही है। जो व्याकुल हो जाए श्री श्याम सुंदर उस समय अलक्षित रूप में उपस्थित होकर के श्री प्रियागणों को संदेश देने लगे। ततस्ता ततः का तात्पर्य है पहले जो उपदेश दिया था उस उपदेश से अब श्री श्याम सुंदर उपस्थित होकर के कुछ भिन्न उपदेश प्रदान कर रहे हैं और उस उपदेश में श्री प्रियाओं से कह रहे हैं बोले भो मत प्राण प्रेयस्या भवत्यस्य वक्षून से मुद्रेण से। बोले हे प्राण प्रियाओं आप जरा अपने नेत्रों को बंद करो तो सही मेरी योग माया के बल को देखो मैं तुम्हारे विरह ताप को अभी दूर करता हूं। अरे मेरे योग माया बल को भूल गई क्या जब सारी गाय चढ़ते चढ़ते मुंजाकिनी में चली गई थी मैंने सारे सखाओं से कहा था बोले अरे सखाओ तुम अपने नेत्रों को बंद करो और सखाओं ने जो नेत्र बंद किए कहां तो गलियाएं मुंजाकिनी वन में आग में चारों ओर से झुलस रही थी जल रही थी और कहां सारे सखा भी सुरक्षित गैया भी सुरक्षित और सब यमुना तल पर उपस्थित हो गए। सब गाय मेरा ही दर्शन करते हुए विराजमान हुई जैसे मैंने दावानल से ब्रजवासियों की रक्षा की दावानल से आप सबकी रक्षा की आप इस समय नेत्र बंद करो तो सही देखो इस विरह दावानल से मैं तुम्हारी अभी रक्षा करता हूं। ततस्ता कृष्ण संदेश गई श्री श्याम सुंदर ने उस समय कोई नया संदेश दिया ये नई प्रार्थना की कि गोपियों आप अपने नेत्रों को बंद करो तो सही। श्याम सुंदर के इस संदेश को सुनकर के श्री ब्रजवानंदिनी मारुनाथ महाव स्वरूपा रसमयी श्री किशोरी जो अलक लड़ी लालली ललक लड़कंता श्री किशोरी जो जो नेत्र बंद करके अपनी कुंज में ही पद्मासन लगा करके वियोगिनी से योगिनी बन करके विराजमान हूँ, श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए जो विराजमान हूँ। श्याम सुंदर कह रहे हैं, प्रिय नेत्र बंद करो, अभी आपका बड़ा ताप दूर करता हूँ। अश्विनी स्वामी, जहाँ योगिनी बन करके विराजमान हूँ, आपने सुंदर पद्मासन लगा रखा है, अपने दोनों हाथों को अपनी गोदी में रखा है, और जो नेत्र बंद किए श्री श्याम सुंदर, इनके हृदय में इनकी आंखों के सामने सामने उपस्थित हो गए। और एक क्षण के लिए जो नेत्र बंद किए, उस एक क्षण में ही शतकोट वर्ष भोग्य सारे लीला सुखों का श्री स्वामी ने अनुभव कर लिया। जय जय श्री राम। श्री हृदय सरकार आनंद पूर्वक श्रीमद वृंदावन में विहार करते हुए विराजमान, एक क्षण के लिए श्री किशोरी जी नयन बंद करके विराजमान है, पर उस एक क्षण में ही कल्प भोग्य रात्रि में जो भोग्य सुख, वे सारे सुख इनको प्राप्त हो गए। ये ब्रज लीला की विशेषता है। श्री बृहद भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी का निरूपण करते हैं कि अत प्रभो प्रियांश धाम्यस्य समयस्य च अवचिंतक प्रभावत्वात् नात्र किंचित असंगत। यहाँ ब्रज लीला में प्रभो, प्रभु का अत्यंत प्रभाव, प्रियांश, प्रियाओं में अपूर्ण सामर्थ्य, धाम में अपूर्ण सामर्थ्य, समय में अपूर्ण सामर्थ्य, कि थोड़े समय में बड़ा समय आ जाए। ब्रह्म रात्र उपावर्ते वासुदेवान मोदिता, रात तो नित्य है, नित्य लीला है रात, प्रत्येक प्रत्येक रात्रि को रात होता है, परंतु तीन आम की जो रात्रि है केवल उस रात्रि में ही इतनी सामर्थ्य आ जाती है, इतने समय का समावेश हो जाता है कि जिन लीलाओं को भोगने के लिए कल्प का समय चाहिए, वो कल्प का समय प्रत्येक रात्रि में, रात्रि के भी एक छोटे से एक याम दो यामों में भी, प्रयामा रात्रि में एक दो यामों में ही वो सारी लीलाएं समाहित हो जाती हैं। अतः श्री शुद्ध जी कह रहे हैं ब्रह्म रात्रो पावर से रात्रिला में वर्णन किया, बोले ब्रह्म रात्रि बीत जाती। ये ब्रह्म लीला की विशेषता कि बड़ा समय हो जाए छोटा, और छोटा समय हो जाए बड़ा। ब्रह्म मोहन लीला में सखाओं ने भोजन कर रहे हैं, और ब्रह्मा यदि बछड़ा बालकों का हरण करके ले जाए, और एक वर्ष बाद बछड़ा बालक मिले कृष्ण को, सारे सखा ये कहे बोले कन्हैया तू कहां गया, हमने तो एक कौर भी ना खाया। एक वर्ष पहले प्रारंभ किया गया जो भोजन, वो एक वर्ष समाप्त हो रहा बाद पूरा हो रहा है, परंतु हाथ में जो दही भात का कौर है वो बासी नहीं हुआ, भूलो की तो ताजी। सखाओं को ये लग रहा है कि बस कन्हैया ये गया और ये आया, जाने कहां गया, तो हमारी पलकों से होता होगा, हम तो साथ साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। तो एक वर्ष का बड़ा समय हो जाए छोटा, और छोटा समय हो जाए बड़ा। श्री किशोरी जी ने जहां नेत्र बंद किए, उस एक क्षण के समय में ही शतकोट वर्ष का श्री योग माया जी ने प्रवेश करा दिया, और योग माया जी ने उन सारे शतकोट वर्षों को प्रविष्ट करा करके श्री श्याम सुंदर के साथ में इन प्रियागणों के अपूर्व अपूर्व विलास को सामने प्रकट कर दिया, अपूर्व विलास, अपूर्व विलास को प्रकट कर दिया। उस एक क्षण के समय में ही रास, जूत, मधुपान, हिंदोल, जल विहार, होली, जितनी भी अन्य अन्य लीलाएं हैं, वे सारी सारी लीलाओं का अपूर्व रूप से विस्तार हो गया है। तो शतकोट वर्ष भोग के जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का अपूर्व रूप से विस्तार उतने से समय में ही हो गया है। ये रस लीला की, श्री ब्रज लीला की अपूर्वता है। श्री स्वामी के आनंद का ठिकाना नहीं, उस समय कृष्ण मिलन प्राप्त करते हुए अपूर्व रूप से आनंदित हो रही है। श्याम सुंदर साक्षात उपस्थित होकर के ये नेत्र बंद करके बैठी, और श्री श्याम सुंदर साक्षात रूप से उपस्थित होकर के इनको सार संपूर्ण सुख प्रदान करते हुए, श्री लीला में जो भी सुख है उन सारे सुखों को प्रदान करते हुए जिस तरह विराजमान है, श्री प्रिया से आनंद का ठिकाना नहीं, रोमांचित हो रही है। उद्धव जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए बोले, श्री किशोरी जी के श्री चरणों में अपने श्री मस्तक का स्पर्श कराते हुए बोले, बोले हे स्वामी, نینوں کو کھولیے, نینوں کو کھولیے. آپ نین بند کر کے بیٹھی ہیں, نینوں کو کھول کر کے دیکھیے تو صحیح. میں آپ کے سامنے اپستھت ہوں. دیکھو شام سندر نے جو آپ کے بطن کہے وہ بطن جھوٹے نہیں ہیں. شام سندر بھوتی نام بیوگوں میں نہیں سرواتم پتے, اس کو سخت کر کے دکھا رہے ہیں. ایک انش میں آپ کے دیو تھا, پرنتو وہ اس سمے تمہارے ساتھ میں ملتے ہوئے براجمان, ملتے ہوئے براجمان. شری سوامی ادھوم پوجیام چکرو ہو جاتواتمانم ادوکم. پریا نے دھیرے سے نیتر کھولے, اپنے روپ سے مخ پر آنند ہو رہا ہے. اس سے میں پھر سے بوجھ رہا ہوں سنا بلہ, یہ تو میں نے کیول سپن دیکھا. پھر سے جرح دکل ہو گئی ہے, پنت متواس مانم ادوکم. شری پریا آتمانم شری شام سندر کو ادوکم ادھکرت اکشم جم اتپن ادوکم متو متواس مانم ادوکم. ساری پریا ہیں نیتر نمیلن کے دوارا شام سندر ہمارے سامنے پرکٹ ہو گئے, یہی مانتی ہوئی براجمان ہوں. متو آتمانم ادوکم ابھی بات آپ کو ہے جھکائے. اکش مانے نیتر اور جم مانے جن. نیتر کو جھکانے سے شام سندر کا جن کے آگے جنم ہو گیا ہے. ایسے متو آتمانم, آتمانم مانے ہمارے پرادھن شری شام سندر آج ادوکم نیتر جھکاتے ہی ہماری آنکھوں کے آگے پرکٹ ہو گئے ہیں. ایسا ہی شری پریاؤں نے انوبھو کیا اور اس سمے ادھر کو